ओम शांति। टॉपिक है कि रियलाइजेशन द्वारा लिबरेशन। तो भाई जी ने बोला था कि आधे दिन तक उस पर चिंतन करते रहना। सच में 2 बजे के बाद ही मैंने मुरली पर चिंतन किया उस पर 6277। तो थोड़ा सा मिक्सअप करके बताएंगे कि बाबा ने क्या कहा और मेरा चिंतन क्या था। कि जब हम ब्राह्मण लाइफ में आते हैं तो रियलाइजेशन ही हमारा फाउंडेशन होता है, जिसके बेस पर हम जो चेंजेस लाते हैं। बिना रियलाइजेशन किए हुए अपने आप में जो भी चेंजेस हम लाते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं। जैसे जो भी हमने अपने से अनुभव किया कि ये मेरे लिए सही है ये नहीं है, तो उसको जब हमने अडॉप्ट किया तो वो जो चेंजेस हमारे अंदर आया वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, वो हमें आगे के लिए मोटिवेट करता रहता है। और कभी कभी तो क्या होता है जनरल केसेस में कि हमें रियलाइज ही नहीं होता कि हमारी ये गलतियां हैं। बहुत बड़ी बात है इस चीज को समझना कि हम रियलाइज कर पाए कि हाँ ये हमारी गलती है। और ज्यादातर केस में हमें रियलाइज ही नहीं होता कि हम यहाँ पर गलत हैं। तो फिर लिबरेशन की तो बात ही नहीं कि उस संस्कार से, उस स्वभाव से मुक्त हम कैसे हो सकेंगे जब तक समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हाँ यहाँ पर मैं लैक कर रही हूँ, मेरी गलती है। उसके बाद सेकंड केस में कभी कभी हमें रियलाइज तो होता है कि हाँ यहाँ पर हम गलती कर रहे, पर सुधार करने का इतना तरीका नहीं पता होता है, इतनी पावर नहीं होती है कि कैसे सुधार कर सके। तो उसके लिए बाबा, ज्ञान, मुरली सब कुछ मददगार है। थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है कि कैसे कैसे करके हम धीरे धीरे करके उस संस्कार से, उस स्वभाव से अपने आप को मुक्त कर सके। और बहुत ज्यादा जल्दी दिखाने की जरूरत नहीं होती है। कि कभी कभी सेंटर पे कोई भाई बहने नए नए आते हैं, बोलते दीदी मेरा योग नहीं लग रहा है। हम कहते धीरे धीरे करते करते लग जाएगा। अगर एक भी मिनट लग रहा है, आधा भी मिनट लग रहा है, तो मानिए कि लग रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं लग रहा है। धीरे धीरे करते करते बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक साधना है, धीरे धीरे करके आपको आती रहेगी। छोड़ना नहीं है, करते रहना है। वैसे अपने को भी छोड़ना नहीं है उस आदत को लेकर के, कि अगर छोड़ दिया अपने आप को, रियलाइज तो किया हाँ यहाँ गलती है, लेकिन छोड़ दिया तो फिर आगे बढ़ नहीं सकेंगे, फिर उस चीज से मुक्त नहीं हो सकेंगे। और फिर बाबा ने कहा जितना इस पर एक फॉर्मूला बन गया कि अगर आपको रियलाइज हो रहा है तभी आपको लिबरेशन मिलेगा, फिर अगर आपको रियलाइज जितना हो रहा है, जितना जितना डीप में आपको रियलाइज हो रहा है, उतना ही उतना आपको संस्कार से धीरे धीरे करके मुक्ति मिलती रहेगी, लिबरेशन होता रहेगा। फिर बाबा ने कहा, फिर बाबा की अव्यक्त वाणी में था कि बाबा आज बच्चों का रिजल्ट देखने आए हैं, गॉडली स्टूडेंट्स का अपने रिजल्ट देखने आए हैं। बाबा ने कहा कि कोर्स किया आपने, फिर आपने रिवाइज्ड कोर्स भी किया, फिर आपने रियलाइजेशन कोर्स भी किया। बाबा ने कहा इसके रिजल्ट क्या हुई हमें बताइए। फिर बाबा ने कहा कि अपने स्वभाव और संस्कार को चेक करो कि अगर आपके राजपद के संस्कार हैं या आपके प्रजापद के संस्कार हैं। बाबा ने कहा 3-4 आधार पर आपको चेकिंग करनी है अपनी, कि कौन कौन से आपके राजपद के संस्कार हैं, कौन कौन, इस आधार पर आप अपनी चेकिंग कर सकते। बाबा ने कहा सत्कारी, अधिकारी, निराकारी और निरहंकारी। अगर चारों का बैलेंस आ रहा है लाइफ में तो आप राजपद के अधिकारी हो, अदरवाइज तो समझ ही जाइए। तो बाबा ने कहा कि आसन है, यही आसन ही सिंहासन है। फिर बाबा ने कहा कि एम्बलप की, फिर बाबा से कुछ ने पूछा होगा कि पुराने बच्चों से आप नहीं मिलते हो, तो फिर बाबा ने कहा कि मिल तो लिया है, अभी अब क्या करना है, रियलाइज करो, हर एक से मुक्त बनो। बाबा ने रियलाइजेशन का एक वर्ड बताया कि सबसे मुक्त, माना जितने भी हमारे पुराने संबंध संस्कार हैं, जितनी भी पुरानी आदतें हैं, स्वभाव हैं, इन सबसे मुक्त होना। फिर बाबा ने कहा कि, फिर बाबा ने थोड़ा सा और क्लियर किया कि हमारी स्थिति को बताने के लिए, बाबा ने कहा कि मेजॉरिटी लोगों का पुरुषार्थ साधारण पुरुषार्थ है। फिर बाबा ने इसका रीजन भी क्लियर किया कि बाबा ने कहा कि बाबा तो कहते हैं कि बच्चे विश्व पसंद बने, प्रभु पसंद बने, और बच्चे क्या करते हैं, आराम पसंद बन जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हैं स्वीट स्वीट से अपने आप को, कर लेंगे, अभी तो करना है, बहुत टाइम पड़ा हुआ है, हमारे से बड़े ऐसा कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा ऐसे डलनप के टकिए लगा करके आराम से गिरती कला में आ जाते हैं। बाबा ने बिल्कुल एकदम जैसे लग रहा हमारा ही चित्र क्लियर किया हो, तो ऐसे करके बताया। फिर बाबा ने कहा कि बाबा तो कहता है कि याद की साधना में बिजी रहो, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, साधनों में बिजी हो जाते हैं। बाबा ने कहा साधन में बिजी होते हैं तो क्या होता है कि अगर हम अपने साधना पर ध्यान देते हैं तो हमारी मुक्ति की स्टेज बनी होती है, हम लिबरेटेड होते हैं, कोई भी अट्रैक्शन किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का हमें इंट्रैप नहीं कर सकता है। फिर बाबा ने कहा कि जीवन मुक्त बनना है तो साधनों की अधीनता अपने आप में, आप से मुक्त बनिए। फिर बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ करने में, याद की साधना में इतना बिजी नहीं हो पाते हैं, लेकिन दूसरों के करेक्शन में बहुत आगे हैं। कनेक्शन लगाने से बाबा में नहीं आगे हैं, लेकिन दूसरों के करेक्शन करने में बहुत आगे हैं। बाबा ने कहा बहुत अच्छी लाइन, इसको हमने माइंड पर अपने डबल कोट अंडरलाइन करके लिखा हुआ है। कि जो दूसरों का करेक्शन करते हैं वो कभी भी अपना कनेक्शन बाबा से लगा नहीं सकते हैं। तो ये बात बहुत अच्छी लगी कि जब तक हम अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगे, कि जब तक हम अपनी कमियों कमजोरियों को जाने कि हाँ यहाँ पर मैं इतनी स्टेज पे आगे बढ़ी हूँ, अभी भी इतनी स्टेज पर मेरी इतनी कमी है, अमृत वेला में मैंने इतना वर्क किया है, अभी इतना और करना बाकी है, अभी मेरी लाइफ में इतनी प्योरिटी आई, अभी और इतना बाकी, जब तक हम अपने ऊपर पूरा फोकस नहीं रखने, अपनी खुद की आंखों द्वारा अपने ऊपर सारा ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो हम दूसरों हम उसके साथ कनेक्शन नहीं करते, उसके साथ कनेक्शन करना इतना भी आसान नहीं है। फिर बाबा ने और डीप में बताया कि किन किन बातों में आपको अपना स्वभाव संस्कार चेंज करना है। बाबा ने कहा कि विश्व आपको परम पूज्य आत्माओं की तरह देख रहा है, आपका सुमिरन कर रहा है, आप विश्व के पटल पर चमकते हुए सितारों के रूप में हो। अब आप अपने आप को प्रत्यक्ष करो, जैसे जैसे आप अपनी, बाबा ने कहा बहुत अच्छी लाइन में कि अपने पुराने स्वभाव संस्कार को दृढ़ संकल्प की आहुति से समाप्त करो। फिर बाबा ने कहा कि पुरानी जितनी भी कमियां कमजोरियां हैं उनको एक धक से खत्म करो, कि आप एक एक को करके सोचते रहोगे लेकिन एक स्ट्रॉन्ग फोर्स का, बाबा ने कहा वर्ड यूज किया, फोर्स का कोर्स अपने को कराओ। बाबा ने कहा तीन चार कोर्स तो मैं करा चुका हूं लेकिन अभी आपको आपको खुद कराना है, फोर्स का कोर्स आपको अपने खुद ही कोर्स कराया, रिवाइज्ड कोर्स कराया, रियलाइजेशन कोर्स कराया। बाबा ने कहा अब आपको खुद ही, अभी बाबा ने कहा अभी आप खुद अपने आप को फोर्स का कोर्स कराओ, क्योंकि जो भी आप कर रहे हो इतनी स्फूर्ति के साथ, इतनी तन्मयता के साथ नहीं कर रहे हो, इसलिए बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कई चीजों का एग्जांपल देकर के हमें बताया कि इन चीजों से आपको मुक्त बनना है, जैसे कि हम दूसरों के अवगुण देखने में और उसका उसको मतलब दूसरों की गलती होगी तो बता देंगे फटाफट कि इनकी गलती थी, ऐसे किया ऐसा किया, और अपनी गलती को बहुत ही एप्टली छुपा लेते हैं कि हाँ हमने तो कुछ किया ही नहीं, और फिर किसी ने किया होगा, क्या पता मैंने किया। तो बाबा ने कहा कि ऐसे क्लियर बोला बाबा ने कि अपनी गलती को छुपाओ नहीं और दूसरों की गलतियों का वर्णन नहीं करो। फिर बाबा ने कहा सेवा में अगर सफलता मिल रही है तो उसका सारा क्रेडिट मुझे जाना चाहिए कि मैंने अच्छा अच्छा किया, और बाबा ने कहा अगर कुछ कमी हो रही है तो उसका ब्लेम इनके ऊपर इनके ऊपर इनके ऊपर सबके ऊपर चलता रहता है। बाबा ने कहा इनसे मुक्त बनो। बाबा ने कहा बीती हुई सारी कमजोरियों का फुल स्टॉप लगाओ। फिर बाबा ने कहा कि ऐसे करके अपने ऊपर पूरा ध्यान रखो और अपने पुरुषार्थ को ऐसे से आगे बढ़ाते जाओ, क्योंकि अभी समय नहीं है। फिर बाबा ने वही कहा कि अब सबसे मुक्त बनो। सबसे मुक्त में हमें खुद चेक करना होगा कि हमारे अंदर वो सब कौन सी बुराइयां हैं, क्योंकि हकीकतनी इन दो आंखों से हम सिर्फ सामने वालों को देखते हैं, और खुद की आंखों को खुद को देखने के लिए हमें अंतर्मन की आंखें चाहिए होते कि हमारे अंदर कितनी अंतर्मुखता के भाव से अपने आप की जांच करो। तो फिर वही दो आंखों से हम दुनिया को देखते रहते हैं, दुनिया में क्या कमी है सिर्फ वही नोटिस करते रहते हैं। बाबा ने कहा एक बहुत अच्छी बात कही थी कि दूसरों की कमजोरी को अपने अंदर मत, उसकी नकल मत करो, अपने अंदर मत लाओ, क्योंकि देखते रहेंगे अटेंशन जाता रहेगा तो कहीं ना कहीं हमारे भी कर्मणा में वो आ ही जाएगा, जबकि हमें पता है कि वो गलत है, होना नहीं चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि कोई कैसा भी हो आपको फुल अटेंशन अपने ऊपर देना है, अब अपने लिए आप लिबरेशन खुद मनाओ थ्रू द रियलाइजेशन। फिर यही लगता है कि बाबा तो सुनाता रहता हमें रोज रोज, लेकिन हम जब तक किसी भी चीज को खुद रियलाइज नहीं करते हैं तब तक उस चीज की गहराई में नहीं जा पाते हैं। खुद का मैं एक्सपीरियंस सुनाना चाहूंगा। मेरे फादर KGMU लखनऊ में एडमिट थे फॉर 10 डेज, तो देखा नहीं, बाबा तो कहते रहता है आत्माएं बहुत दुखी है, शांत है, परेशान है, तो जब लाइफ देखने को मिला कि हाँ कितना सामने कोई आत्मा शरीर छोड़ रही है, किसी के पास इतना दर्द है, 10 दिन से कोई होश में नहीं आया, फिर ऐसे ऐसे करके जब खुद देखा तो लगा हाँ बाबा सही कहता है कि बाबा सच में आत्माएं बहुत दुखी हुई है, क्योंकि ऐसे कहते नहीं हॉस्पिटल वगैरह कभी कोई जाना नहीं होता, कभी कोई मतलब कभी कुछ थोड़ा बहुत हुआ तो जाना होता है, ऐसे कोई हॉस्पिटल जाता नहीं है। फिर जब खुद जा करके देखा तो लगा कि हाँ सच में आत्माएं बहुत, और सब कहते थे कि पापा के लिए योग लगाओ योग लगाओ योग लगाओ, मेरा खुद का योग पापा के लिए लगा नहीं कभी, क्योंकि बाबा ने कहा आप बेहद के लिए, हमने कहा मेरा नहीं लगता, बाबा आप लगा लो या तो फिर जो लगा रहा है उससे कह दो कि वो लगा ले, मेरा खुद तो नहीं लग रहा। शाम के टाइम में थोड़ा बैठती थी तो शाम के टाइम में सकास देती थी, और लेकिन जब ये रियलाइजेशन हुआ कि हाँ सच में आत्माएं बहुत दुखी हैं और सच में इनको मुक्ति चाहिए, क्योंकि ना जो डॉक्टर्स उनको ट्रीट करें, जो सिस्टर्स उनको ट्रीट कर रही हैं, जो भी इनका फैमिली है, मेडिकल फैमिली है, वो खुद भी इतने एम्पावर्ड नहीं होते हैं कि खुद उनको इतना, ऐसे बीके फैमिली में तो होते हैं काफी अच्छे से ट्रीट करेंगे, बट जो बाहर होते हैं उनमें डॉक्टर्स भी ऐसे पेशेंट ही होते हैं, क्योंकि उनकी खुद का भी मेंटल स्टेटस बहुत अच्छा नहीं होता है जहां तक मैंने, हाँ कुछ भी कह सकते हैं, मतलब उसका कहने का सेंस ये नहीं है कि पेशेंट होते हैं वो, बट कुछ ना कुछ निगेटिविटी तो उनके अंदर होती है। सिर्फ पेशेंट को सिर्फ वो नहीं चाहिए होता कि अच्छी आप दवा दे दो, पेशेंट को ये भी चाहिए होता है कि वो डॉक्टर को ही सब कुछ मानता है, क्योंकि जो अज्ञानी लोग होते हैं ना, और तो उनको डॉक्टर से बहुत बहुत भगवान ही मानते हैं, क्योंकि दो ही प्रोफेशन होते हैं जिनको भगवान के पैरेलल लगाते हैं लौकिक दुनिया में, एक टीचर और एक डॉक्टर, तो बहुत कुछ उनके होती है, तो उससे भी फर्क पड़ता है कि अगर वो एम्पावर्ड हो तो कैसे पेशेंट को भी ट्रीट कर सकते हैं। फॉर साथ साथ ये भी होता है ना कि बहुत उनके पास वर्क प्रेशर होते हैं, बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल था, बहुत डॉक्टर्स की कमी होती है, तो बहुत सारे देखना होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं इरिटेशन होती है, तो सेल्फ थॉट मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं हो पाता है, तो वो पावरफुल एनर्जी सस्टेन नहीं कर पाती है। तो ये सब फिर तब रियलाइज हुआ कि सच में ऐसा, तब से मैं ये हुआ कि शाम के सकाश सुनवा शाम के टाइम में पहले भी करती थी, बट इतना टेंशन से नहीं करती थी, इतनी मतलब सिंसियरिटी से नहीं करती थी, लेकिन जब से रियलाइज हुआ कि हाँ सच में बाबा कह रहे हैं अभी करना चाहिए, तो फिर तब से बहुत अच्छे से सकाश मतलब हर वीकली प्रोग्राम बनता कि इस दिन मेंटल पेशेंट को, इस दिन कैंसर पेशेंट को, इस दिन ऐसे ऐसे करके अलग अलग 7 दिन तक, अभी तो किसी दिन कर दिया कैजुअली ऐसे ऐसे कर दिया बस इतना नहीं, लेकिन अभी अलग अलग प्रोग्राम बनता है सकाश के लिए भी, तो हम जितना पता होगा उतना उतना करते रहेंगे, बाकी तो बाबा सिखाने वाला है। थैंक यू। ओम शांति।
ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मुझे जो आज टॉपिक मिला इंटरेस्टिंग है, सदा सुहागिन की निशानियां। तो आई थिंक हम आज इस पे डिस्कशन करेंगे कि लौकिक वर्ल्ड में और अलौकिक वर्ल्ड में सदा सुहागिन की निशानियां और इनके मीनिंग्स क्या होते हैं, और इनको कंबाइन करने की कोशिश करेंगे दोनों निशानियों को। मुरली है 28 अप्रैल 1977 की, जिसमें बाबा ने कुछ निशानियां बताई सदा सुहागिन की। उसमें पहली निशानी थी स्मृति का तिलक, और बाबा ने कहा कि जितनी स्मृति ज्यादा उतनी तिलक चमकता हुआ, और जितनी स्मृति कम तिलक की चमक कम होती जाती है। फिर बाबा ने कहा सदा चमकता हुआ तिलक, ये बाप के साथ के सुहाग की निशानी है। फिर बाबा ने कहा सुहागिन अर्थात एक पल और एक श्वास भी वो साथ नहीं छोड़ती, उनके बोल होते हैं साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ जिएंगे। सदा सुहागिन की थर्ड निशानी बाबा ने बताई, जिनके कानों में सदा महामंत्र, मनमना भव का महामंत्र सदा गूंजता रहे। फिर बाबा ने कहा सदा सुहागिन की स्टेज होती है तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से खाऊं, और तुम्हारा सुनाया हुआ ही सुनाऊं। फिर सदा सुहागिन की एक निशानी बाबा ने बताई, एक पाप दूसरा न कोई, संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र भी किसी देहधारी के प्रति झुकाव नहीं, क्योंकि बाहर की दुनिया में बहुत इन्फ्लुएंस है। फिर बाबा ने कहा लगाव तो बड़ी बात है, झुकाव भी नहीं, और अगर ऐसा होता है तो ये महापाप की श्रेणी में आता है। फिर बाबा ने कहा कि सदा सुहाग को हमेशा भाग्य के साथ रिलेट करते हैं, ऐसा समझते हैं दुनिया में भी कि सुहाग गया तो भाग्य गया, और किसी भी लौकिक कार्य में भी अगर वहां पे सुहागिन स्त्री होती है तो उसको श्रेष्ठ माना जाता है कि ये सुहागिन है। तो सुहाग और भाग्य का बहुत कनेक्शन है। सदा सुहागिन अर्थात सदा भाग्यवान, सदा प्राप्ति संपन्न, और इसका आधार है संपूर्ण प्योरिटी। संपूर्ण प्योरिटी अर्थात विकारों का अंश भी ना हो, और इसकी निशानी है, संपूर्ण प्योरिटी की निशानी है सदा अविनाशी खुशी। फिर बाबा ने सदा सुहागिन के लिए बोला सदा खुश रहने वाले। तो ये तो था जो अलौकिक वर्ल्ड में जो बाबा ने डिस्कशन किया। अगर लौकिक वर्ल्ड में भी हम देखें तो सुहागिन की निशानी बिंदी होती है और मंगलसूत्र लगाते हैं, ऑल्दो बिंदी इज वेरी कॉमन दीज डेज, तो वो तो सब लगाते हैं, और मंगलसूत्र पहनते हैं खास कि ये सुहागिन की निशानी है। इनफैक्ट मुझे याद आ रहा था जब मैं कल इस टॉपिक पे चिंतन कर रही थी, When I used to work in Mumbai, तो बहुत सी कन्याएं भी मंगलसूत्र पहनती थी, तो तो हम उनसे पूछते थे कि हमें आप ये क्यों पहनती हो. रियली रियली उन्होंने यही आंसर दिया. नहीं फैशन तो आई डोंट थिंक सो मंगलसूत्र इतना इंटरेस्टिंग होता है, पर फैशन ही था. फैशन नहीं, उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है और लोग हमारे ऊपर इस तरह से खराब नजर नहीं डालते हैं और हाँ दे फील प्रोटेक्टेड, उनको ऐसा लगता है. और उनको और उन्होंने ये भी कहा कि सामने वाला हमेशा ही सोचता है कि देयर इज समबडी बिहाइंड देम, कोई है इनके लिए खड़ा है पीछे. तो अगर इसको हम अलौकिक वर्ल्ड के सो अलौकिक वर्ल्ड में भी बाबा ने जैसे कहा स्मृति का तिलक, तो स्मृति का तिलक भी हमारे लिए अगर कंटिन्यूअस याद रहता है तो हम सेफ जोन में है और प्रोटेक्शन मोड में है. लेकिन अगर वो तिलक बार बार भूलता है तो हमारी सेफ्टी पे भी क्वेश्चन मार्क आ सकता है. एंड वी ऑल्सो थिंक दैट यू नो वी हैव बाबा बिहाइंड अस इफ वी आर वेयरिंग, मतलब स्मृति का तिलक अगर पहन रहे हैं तो बाबा हमारे पीछे. और फिर बाबा ने एक पॉइंट बताया कि जैसे लौकिक वर्ल्ड में बोलते हैं कि अलौकिक वर्ल्ड में कहा कि साथ जिएंगे साथ रहेंगे, तो कभी अकेला होना ही नहीं है. तो जब अकेला होना ही नहीं है एंड देर इज समबडी ऑलवेज विद यू, तो माया की भी कोई गुंजाइश नहीं कि वो अटैक कर सके. फिर जैसे उसमें कहा कि सदा सुहागिन की स्टेज है तुम्ही से बोलू तुम्ही से खाऊं तुम्ही से सुनू. सो हम इसको किस पर्सपेक्टिव में देखते हैं या लौकिक वर्ल्ड में, जब हम कहते हैं तुम्ही से सुनू तुम्ही से बोलू तुम्ही से खाऊं, इसका मतलब तुम्ही से ही राय लू तुम्ही से ही सारी ओपिनियन लू तुम्ही से सारी एडवाइस लू. पर मैं सोच रही थी क्यों कहता है बाबा ऐसे कि तुम्ही से करूं सब, तुम्ही से क्यों एडवाइस लू. वैसे भी कहते हैं जब हम दो ओपिनियंस ले लेते हैं ना किसी से या दो तीन जगह एडवाइस ले लेते हैं तो वी गेट कन्फ्यूज, और जहां कन्फ्यूजन है वहां कॉम्प्लिकेशन आने में देरी नहीं लगती. तो फिर शायद इसलिए बाबा कहते हैं कि टॉक टू मी कम टू मी, जो भी करना है मेरे साथ ही करो. हाँ शायद इस लैंग्वेज में नहीं बोलता होगा. हाँ तो उसमें कंफ्यूजन भी बहुत होता है. एक वो जैसे कोई छोटी बीमारी है तो चार डॉक्टर्स के पास जाएंगे कि आप बताओ करें नहीं करें करें नहीं करें, और एंड ऑफ द डे पेशेंट इतना कंफ्यूज हो जाता है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा होता कि वेदर उनको कौन से डॉक्टर की ओपिनियन माननी चाहिए. रियली नेचुरोपैथी जाएगा आयुर्वेदिक जाएगा एलोपैथी जाएगा, तो जितनी एडवाइस मिलेंगी उतना कन्फ्यूजन है, और कन्फ्यूजन है तो फिर कॉम्प्लिकेशन शुरू होता है. फिर जो बाबा ने कहा कि जैसे हम किसी से कोई बात शेयर करते हैं तो हम किसी से शेयर करते समय कहते हैं कि हम आपसे बात तो शेयर कर रहे हैं पर प्लीज किसी को बताना मत. और हमें काफी इनसिक्योरिटी रहती है बट अंदर का इतना गड़बड़ होता है मामला, ये पता होता है कि हम इनसिक्योर हैं बट स्टिल वी कीप ऑन शेयरिंग. डेफिनेटली, क्योंकि जो बात मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही वो क्या गारंटी है कि उसको डाइजेस्ट होगी, मैंने भी तो डाइजेस्ट नहीं की ना, उसका भी तो कोई दोस्त है. सो बाबा के साथ शेयर करने में कितनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है कि हमें ये नहीं कहना पड़ता बाबा को कि बाबा प्लीज वो पड़ोस वाला आ जाए तो उसको शेयर नहीं करना, दूसरा भी हो. तो कितना प्रोटेक्शन है बाबा की याद में, सेफ्टी है. और फिर एक बार दूसरा ना को ये तो हो गया. और सदा सुहागिन अर्थात यू आर मैरिड है ना, तो ऐसा नहीं होता कि यू आर मैरिड फॉर अ मंथ और यू आर मैरिड फॉर टू मंथ्स एंड देन यू आर नॉट मैरिड फॉर 15 डेज बट अगेन यू आर मैरिड फॉर द सेम पर्सन अगेन फॉर वन मंथ. लिव इन रिलेशनशिप में या तो है या नहीं है, वो लिव इन है ना, फिर यू आर नॉट मैरिड देन, मैरिड का ठप्पा नहीं है उसमें. सो मैरिड मीन्स के या तो आप मैरिड हो या आप मैरिड नहीं हो. तो इसी तरह जब हम स्मृति का तिलक लगाते हैं कुछ दिन बहुत अच्छी बाबा की याद चलती है, स्मृति का तिलक लगा है एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, बट कुछ दिन के लिए फिर हमारी वो स्मृति जो इतनी पावरफुल है वो कभी उतनी नहीं रहती है. तो आई थिंक बाबा जो कहते हैं कि स्मृति का तिलक अगर हम सदा ही लगाए रखें तो ये सदा सुहागिन वाली निशानियां काफी काम करेंगी हमारे साथ. आई थिंक इतना ही लिखा है. थैंक यू.
ओम शांति. वो टॉपिक मिला था ब्राह्मण जीवन में खुशी की, ब्राह्मण जीवन में खुशी की झलक चेहरे पर दिखाई दे. ये 14/11/1979 हाँ, तो इसमें बाबा ने बताया कि ब्राह्मण जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट है खुशी, अगर खुशी नहीं है तो ब्राह्मण जीवन नहीं है। तो हमने ये अनुभव किया है कि अपने लाइफ में कि हमको खुश रहना है, चाहे कोई कुछ भी कार्य, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन खुशी न जाए, खुशी जैसी खुराक नहीं और हम और चिंता जैसी कोई बीमारी नहीं, इसलिए हमें चिंता नहीं करनी है और एक बाबा को सामने रख करके आगे बढ़ना है। तो हमारा एक अनुभव है, हम स्कूल में पढ़ा रहे थे तो हाँ बच्चों को, तो उसमें ये था कि हमारे अधिकारी जो थे वो हमको एक जिम्मेवारी दी थी, उस समय इलेक्शन का पीरियड चल रहा था तो हमको वो BLO बनाया था, बूथ लेवल अधिकारी, तो वो चेक करने आए तो हम तो अपना काम एकदम ओके रखते थे, तो उनको कोई डांट वाट पड़ी होगी वहाँ, तो उन्होंने भागते हुए हमारे यहाँ स्कूल में आ गए और कहने लगे, बहुत सारा सुनाया कि ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, बहुत सारा, यानी जो उनको दबाव पड़ा था वो उनके चेहरे पर थोड़ा दिख रहा था। तो हम मुस्कुराते हुए ऐसे सुन रहे थे, तो हमसे कह रहे कि तुम गंभीरता से नहीं लेते हो मेरी बात को, तुम ऐसे मुस्कुराए जा रहे हो, लगता है कि ड्यूटी व्यूटी कुछ नहीं करते हो। तो हमने कहा इसमें मुस्कुराने में और आपकी बात सुनने में क्या जाता है, हम तो ऐसे हैं, आप बताते जाओ, हम सुन रहे हैं आपकी बात। तो वो जो है कह रहे हैं गंभीरता से नहीं लेते हो, कार्रवाई हो जाएगी। हमने कहा कार्रवाई इसमें क्या हो जाएगी, हमने अपना काम पूरा कर लिया, आपका काम है, आपने नहीं किया होगा इसलिए आपको आपको कुछ ने कहा होगा। तो फिर वो फिर चले गए। तो इस तरह से हम किसी भी कार्य को इस तरह से ज्यादा उसमें नहीं लेते हैं, टेंशन नहीं रखते हैं कि कोई क्या कह रहा है, हम अपने मस्ती में रहते हैं, बाबा को याद करते रहते और मस्ती में अपना कार्य करते रहते हैं। तो इसलिए और बाबा ने तो ये बताया है कि खुशी संगम युग की आपकी जो है बहुत खजाना है, संगम युग का आपका जो है खुशी खजाना है, अगर खुशी चली गई तो ब्राह्मण जीवन ही बेकार नीरस हो जाता है। तो इसलिए खुशी में बाबा ने कहा खुश रहो, मौज में रहो और मस्त रहो, ये बाबा ने इसमें बताया है। और ये भी फिर बाद में बताया है कि खुशी गुम क्यों होती है, क्योंकि हम एक साथ दो चीजें लेते हैं, बाबा ने कहा उसका मिसाल दिया दो लड्डू लेते हैं, कि एक मतलब माया भी न जाए और खुशी भी न जाए। तो माया जब आती है तो खुशी गुम हो जाती है, तो माया को हमको आने ही नहीं देना है। बाबा ने कहा माया को अपने पास नहीं रहने देना है, क्योंकि इससे फिर आपका जो आपकी खुशी है वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। तो उसका कारण है कि माया आए ही क्यों, तो जब बाबा को हम साथ रखेंगे, बाबा के साथ बातें करेंगे और हमें जब टाइम ही नहीं होगा किसी से बात करने का, तो इससे हम बचे रहेंगे। और फिर बाबा ने उसमें बताया कि फिर मुलाकात की पार्टियों से, तो उसमें नेपाल का बताया कि नेपाल तो महाराजा है, महाराजाओं की धरनी है और वहाँ पर अच्छे स्वभाव के लोग रहते हैं, और वहाँ पर अमरनाथ की कथा का एक गायन बाबा ने बताया कि अमरनाथ की कथा है कि अमरनाथ पार्वती को कथा सुनाई, तो ये तो सब आपके लिए है और आप इसको सुनो और अमर बन जाओ। भक्ति मार्ग तो भक्ति मार्ग में तो ऐसे कथा ले ली है, उसका रहस्य तो उनको पता नहीं है, है? नहीं कल की नहीं, उसमें भी है कल का तो है। तो फिर उसके बाद बाबा ने फिर आसाम वालों से मिले, फिर आसाम वालों को बताया कि तुम तो सबसे बड़े आसामी हो, सबसे बड़े कि तुम बहुत, आप अपने पूर्वज में जाओ, पीछे जन्म में कितने महान थे, कितने संपन्न थे, तो इस नशे और खुशी में रहो कि हम पूर्वज हैं, और याद करते हुए नशा कम न हो, ये बाबा ने उनके लिए बताया। फिर उसके बाद फिर बिहार में बिहार वालों से मिले बाबा, तो उन्होंने कहा तो सदा बहार, बाबा ने कहा आप तो सदा बहार में रहने वाले हो, आपको सदा बहार लाना है, इसी खुशी में रहो। और सतयुग में तो होता ही है सदा बहार, तो ऐसा समय अभी आने वाला है, तो इसके लिए आप पुरुषार्थ करो, आगे बढ़ते रहो। और फिर माताओं को कहा कि माताएं तो बहुत ही पावरफुल होती हैं फिर माताओं के लिए कहा कि माताएं आगे बढ़ती रहो, मास्टर सर्वशक्तिमान का बाबा ने उनको टाइटल दिया, ये नहीं भूलना। और माताएं थोड़ा बाबा की याद बहुत करती हैं और आगे बढ़ती रहती हैं, माताओं को कोई प्रकार की बाबा के प्रति संशय नहीं आता है, ये बाबा ने उनको बोला। फिर बिहार के बाद फिर बाबा ने बंगाल वालों से मिलाए, बंगाल वालों से कहा कि आप तो पुराने यादगार के हो, माना वहाँ पर बहुत यादगार है कि वो बंगाल में नदी है एक, तो वहाँ बाबा ने कहा कि तुम जो है ब्रह्मपुत्रा नदी है तो वहाँ बाबा ने कहा कि और यहाँ पर एक बात और मशहूर है कि यहाँ पर बलि बहुत चढ़ाते हैं लोग, काली माता की मशहूर है कि वहाँ पर कहते हैं बलि चढ़ाते हैं, तो आप सब लोगों ने बलि चढ़ाई है, तो क्या बलि चढ़ाई है? तो उन्होंने कहा कि आपको जो है बलि बाबा के ऊपर बलि चढ़ना है, मतलब अपने को बलिहार कर देना है, जो भी बाबा कहे जैसा कहे वैसा करते जाना है, इसी को कहते, इसी का यादगार है कि कलकत्ते वालों ने फर्स्ट नंबर लिया और वहाँ पर सबसे पहले ये यादगार बल चढ़ना शुरू हुआ। फिर उसके बाद बाबा ने फिर वो तमिलनाडु, लास्ट में तमिलनाडु पार्टी से मिले तो लास्ट में ऐसे फिर तमिलनाडु वालों से बाबा मिले, और तमिलनाडु वालों को भी बाबा ने कहा कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहो और बाबा से आकर के मिलन मनाते रहो और बाबा से वरदान लेते रहो। तो उनको बाबा ने वरदान दिया कि कभी भी अमृत बेला मिस ना हो, सबसे इम्पोर्टेंट कमाई अमृत बेले में होती है, इस हमारा मिस हो जाता है कभी कभी यहाँ नहीं होता, यहाँ तो नहीं होता है, घर पे हो जाता है कभी, यहाँ तो कभी नहीं होता तो कहीं बाहर होए तो फिर मिस हो जाता है। तो इस तरह से बाबा ने उनको अमृत बेला मिस ना होने का उनको बाबा ने दिया कि सबसे हाँ प्लानिंग बना के जाएंगे कि कभी भी अमृत बेला मिस ना हो। कौन सी यही नहीं ये और नहीं ली, हम इतना पढ़े नहीं, बीच बीच में पढ़े थे। ओम शांति।
ओम शांति। बाबा ने कल जो यहाँ पर डिस्कशन हुई तो भाई जी ने मुझे एक टाइटल दिया कि परोपकारी कैसे बने। ये 12/12/1978 की मुरली है, इसमें बाबा ने परोपकारी के बारे में बताया है कि परोपकारी। तो मैंने भी अपना मनन चिंतन किया और वो लिखा, फिर उसके बाद फिर बाबा की वाणी को पढ़ा। तो पढ़ने के बाद देखा कि हम जो करते हैं और जो हमने सोचा है, और बाबा तो बेहद का है, तो बाबा की वाणी में काफी बेहद की बातें थी जो मैं आपके सामने थोड़ा डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले बाबा ने, पहली पॉइंट है कि बाबा की आस, पहला पैराग्राफ है उस पे बाबा की आस, संपूर्ण जो बाप है उसके संपूर्ण बच्चे। तो बाबा तीन प्रकार के बच्चों को देख रहे थे। एक ऐसे बच्चे देख रहे थे जो रूहानियत की स्थिति में खिले हुए बच्चे थे, और दूसरे ऐसे बच्चे थे जो थोड़े कम खिले हुए थे लेकिन उनके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी, उनके चेहरे पर खुशी की निशानी दिखाई दे रही थी। और तीसरे ऐसे बच्चे थे जो आधे खिले हुए थे, लेकिन बाबा ने कहा उनमें स्नेह और संबंध दोनों की निशानियां उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। स्नेह और संबंध के हिसाब से उनका चेहरा जो है थोड़ा सा सुंदर दिखाई दे रहा था। तो बाबा कहते हैं हर एक बच्चे की जो आस है, हर एक बच्चे की जो इच्छा है, वो हमेशा संपूर्ण बनने की होती है। तो बाबा ऐसे संपूर्ण बच्चों को देख रहे थे कि बाबा कहते हैं ऐसे संपूर्ण बच्चों की निशानी यही है कि वो अब सिर्फ अपने आप को क्या समझे, सिर्फ अपने आप को यही समझे कि मैं ब्रह्माचारी हूं और मैं परोपकारी हूं। फिर बाबा ने यहाँ पे परोपकारी की मुरली स्टार्ट करी बाबा ने। तो बाबा ने सेकंड पैराग्राफ में है परोपकारी की बहुत सारी निशानियां बताई हैं, परोपकारी बच्चे कौन कौन से होते हैं। ऐसे बच्चे, तो सेकंड पॉइंट है परोपकारी की निशानियां, तो ऐसे बच्चे जो हमेशा दूसरों के गुणों को ही देखते रहते हैं और गुणों का ही दान करते रहते हैं। दूसरे ऐसे परोपकारी बच्चे अर्थात ऐसे बच्चे जो हमेशा किसी भी की कमजोरी को भी देखते हैं, तो कमजोरी को देखने के बाद भी फिर बाबा बता रहे हैं कि वो ऐसे बच्चे उनको दान भी देते हैं, उनकी कमजोरी को दूर करने के लिए गुणों का दान करते हैं। परोपकारी बच्चे ऐसे होते हैं जो होपलेस में भी होप भर देते हैं, ऐसे परोपकारी बच्चे होते हैं। तो ये सारी बातें जब हमने पढ़ रहे थे तो हमने सोचा, तो हमने जो सोचा था और ये जो बाबा जो कह रहे हैं उसमें कितना अंतर है। हम तो चलो लौकिक में थोड़ा सा सेवाएं ऐसी करते रहते हैं, दूसरों के परोपकार के बारे में सोचते रहते हैं, किसी को सोशल वर्क भी करते हैं, लेकिन जो बाबा सोचता है, जो बेहद की बातें सोचता है, वो एक अलग ही होती है। तो बाबा ने ये इतनी सारी परोपकारी की परिभाषा बताई। परोपकारी बच्चे ऐसे हैं जो गुणों से अपनी मनसा सेवा द्वारा वो कभी भी सौदागर नहीं बनते हैं, वो कभी सौदा करने वाले बच्चे नहीं होते हैं, वो हमेशा देना देने के बारे में ही सोचते हैं, लेने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, देना है। तो कहते हैं सौदागर बच्चे कभी भी परोपकारी बन ही नहीं सकते हैं। तो बाबा ने परोपकारी बच्चों की ये निशानियों में ये कहा। तो परोपकारी बच्चे, फिर बाबा जैसे ही मुरली को आगे बढ़ाया तो फिर दादी जी से बात करने लगे। तो बाबा ने कहा मुझे एक परोपकारी ग्रुप चाहिए, मुझे ऐसा ग्रुप चाहिए जो परोपकारी हो, अर्थात जिनके अंदर दातापन के संस्कार हो। तो ऐसा मुझे, दातापन कौन होता है, जिसके अंदर दातापन के, वो एक राजा के जैसा होता है। राजा कभी भी अपने पास रखता नहीं है, राजा हमेशा देता है, और लेने वाला कभी भी राजा नहीं हो सकता है। हमें आगे जाना है, आपके अंदर राजापन के अभी से संस्कार होंगे तो फिर आप हमेशा राजापन के, जैसे हमारे अंदर अभी संस्कार होंगे तो आगे राजापन, आप राजा बन सकते हो। तो राजा अर्थात देने वाला, लेने वाला नहीं। तो इस तरह से दादी से मुलाकात कर रहे थे। दादी जी को बाबा ने एक और परोपकारी की परिभाषा दादी के सामने भी कही, कहा परोपकारी अर्थात इच्छा मात्र अविद्या, कुछ भी इच्छा नहीं, पद की भी इच्छा नहीं, मान की भी इच्छा नहीं, शान की। बाबा ने हमेशा बच्चों को आगे किया, नाम किसका किया, बच्चों का, और काम बाबा का। तो इस तरह से बाबा ने कहा नाम और मान को अपने साथ ना रख के बच्चों को आगे करने वाले ऐसे बच्चे परोपकारी बच्चे, जो इच्छा मात्रम अविद्या है, तो ऐसे बच्चे परोपकारी बच्चे हैं। तो इस तरह से बाबा ने दादी से बात करी। फिर बाबा ने आगे पार्टियों से बात करी, पार्टियों से कहा, सबसे पहले पार्टी को कहा बाबा ने न्यारा, अति न्यारे तो अति प्यारे, जो जितना न्यारा होगा उतना वो प्यारा बनता चला जाएगा। तो बाबा ने अति न्यारे और अति प्यारे के ऊपर काफी समझाया वहां पर। और फिर उसके बाद बाबा ने दूसरी पार्टी वालों को बताया कि आपको अपनी स्मृति का, आपको अपनी स्मृति याद रहती है, आपको ये याद रहता है कि जब आप किसी यादगार स्थान पर जाते हो, जब आप किसी मंदिर में जाते हो, तो आपको ये याद रहता है कि ये मेरी ही यादगार है, ऐसा नशा चढ़ा रहता है। तो पार्टियों से बाबा बात कर रहे थे, तो ऐसा नशा चढ़ाना है कि ये मेरी ही यादगार है, तो इसी नशे में रहते हो। तो बाबा सबको नशे की बात उस समय कर रहे थे। लास्ट में बाबा ने कहा कि देवहन की मिट्टी से दूर, अर्थात अपनी मिट्टी, ये जो हमारी देह है, इस देवहन में रहकर मिट्टी में क्यों खेलते हो, कि नीचे क्यों रहते हो, हमेशा ऊपर क्यों नहीं आते हो? तो बाबा कहते मेरे पास आओ। तो लास्ट में बाबा ने कहा अच्छा, ओम शांति।